हम आज करेंगे माँ को, ठीक है। माँ इस अलामत के कई मानी और मफहूम होते हैं, हर एक की मुख्तलिफ वजाहत है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल है कि कभी माँ का मानी नहीं या फिर ना करते हैं, यानी नहीं के मानों में या फिर ना के मानों में माँ आता है। मसलन माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ है। अब देखें कि माँ के बाद वद्दा, ठीक है, वद्दा का ये अल्लाह ताला का एक फ़ेल हमें दिखता है नबी सल्लम के मामले में, तो फिर यहाँ नहीं के मानों में है कि नहीं छोड़ा या नाराज़ नहीं हुआ। वमई यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुद्दिल, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसको कोई भटकाने वाला नहीं। पहली मिसाल जो थी सूरह दुहा 3 की थी और ये सूरह ज़ुमर 37 की है। फिर इसी तरह आयत नंबर 62 सूरह आले इमरान में आता है, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। ये तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कुरान पाक में बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अगले को देखते हैं, कभी कभी माँ का मानी जो भी होता है, यानी नहीं नहीं होता बल्कि जो होता है। मसलन वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, सूरत बकरा की आयत 4 में ही हम पढ़ते हैं कि जो उतारा गया आपसे पहले। अब अगर हम इधर ये कर दें और नहीं उतारा गया आपसे पहले, तो मानी बदल जाएगा ना। नहीं कब आता है वो आगे आपको थोड़ा सा इसके एंड पे जाके पता चलेगा कि माँ का मानी जो कब आना है और नहीं कब आना है। इसी तरह देखिए सूरत तौहा की आयत 81 है, कुलू मिन तैयबाती मा रज़क़नाकुम। अब यहाँ ज़रा गौर से इसका तर्जमा सुनिएगा, जो ठीक तर्जमा है वो क्या है, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको रिस्क दिया। और अगर आप माँ को नहीं कर दें तो क्या होगा, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो नहीं हमने तुमको दी, यानी हमने नहीं दी किसी और ने दे दी हैं, राइट। तो मानी बिल्कुल बदल जाएगा ना। इसी तरह देखिए, यालमु मा यलिजु फिल अर्द, वो जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है। सूरह सबा की आयत नंबर 2 है, 2 आयत है कि अल्लाह ताला ज़मीन में दाखिल होने वाली हर चीज़ को जानता है। तो ये भी आसान है, पहला माँ के लिए क्या है, सब मिल के बोले नहीं के मानों में, ठीक है, दूसरा जो के मानों में, तीसरा इसका इस्तेमाल कभी माँ का मानी क्या या फिर किस भी किया जाता है, यानी किस, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना हु, whom, what के मानों में भी होता है। मसलन इसमें सवाल का एक अंदाज़ हमें दिखेगा, सूरह तौहा की आयत नंबर 17 में आता है, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, और वो क्या तेरे दाएं हाथ में है मूसा। तो यहाँ माँ का मानी अगर आप देखिए कि हम पहला करें और नहीं है तेरे हाथ में, सेंस नहीं बनती ना, और नहीं क्या तेरे हाथ में है मूसा, समझ नहीं आती ना। फिर इस और जो तेरे हाथ में, जो हो सकता है अगर मानी, जुमला भी ठीक है लेकिन हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि क्या का मानी आ रहा है, क्वेश्चन है ना, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंग्लिश में अगर आप वॉस का लफ्ज़ बीच में लगा दें तो वॉज़ मैंने माजी में किसी चीज़ के होने को कहेंगे ना, शुरू में लगा दें तो क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह हैज़, हैड, हैव, ये सब बीच में आता है तो सेंस बदल जाती है, शुरू में आता है तो सवाल हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरू में आ रहा है वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा। इसी तरह सूरत अल इन्फितार की आयत नंबर 6 में आता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका रब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किसने बहका दिया अपने रब करीम से। तो आप देखेंगे कि सवालिया है ना, तो बोलने में और आयत पढ़ने में भी एकदम टोन थोड़ी सी मुख्तलिफ होने लगती है, यानी अगर आप इसको यूँ पढ़ें, बल्कि अगर आपको सेंस जब आती है कि भाई इधर माँ का क्या है, तो जब आप अरबी कुरान पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आप फीलिंग से दे सकते हैं। मसलन अगर मैं इस आयत को दो तरह पढ़ के दिखाती हूँ आपको, जैसे एक है वमा तिल कभी यमीन ही का या मूसा, हाँ, या अय्युहल इंसान उमा गरा कभी रब्बी कल करीम। अब आपको मेरे एक्सप्रेशन से कुछ नहीं पता चला, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ वमा तिल कभी यमीन ही का, तो आपके जहन में फ़ौरन लगेगा कि यहाँ सवाल है ना। तो कुरान का फहम ऐसा होना चाहिए, तर्जमा इतना अच्छा याद हो कि जब आप अरबिक पढ़े तो लोगों को आपकी अरबिक से सेंस समझ आ जाए तर्जमे की। اسی طرح یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ دیکھیں خود بہت ہاتھ یوں ہو جاتا ہے، جیسے کوسچن ہے ما غرک، کیا حال ہے، تو بالکل یہ کوسچننگ سٹائل جو ہوتا ہے یہ انسان کے بولنے میں بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے. چوتھا اس کا استعمال ہے، کبھی کبھی ماں اظہار تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ پھر کس قدر کیا جاتا ہے. مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت 175 میں آتا ہے فما اصبرہم علی النار، بس کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر. اور بھی اس کو ٹپیکل کریں تو کیا ہوگا، فما اصبرہم علی النار، بس کس کیا ہے صبر ان کا آگ پر. حیرت ہے کہ آج صبر کر رہے ہیں، کل گرمی لگتی تھی، ان کو موٹے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، ان کو ٹانگیں ننگی کرنی تھی، ان کو بازو ننگے کرنے تھے، ان کو چہرہ ننگا کرنا تھا، یا دوسروں کو دیکھ کر ان کو گھٹن ہوتی تھی. فما صبرہم علی النار، آج کتنا کو صبر کریں گے یہ جہنم کی آگ پر. اسی طرح سورۃ عبس آیت 17 میں آتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو انسان کس قدر نہ شکرہ ہے. اگر آپ یہاں ماں کے باقی تین معنی لگائیں گے نا تو سینس نہیں بنے گی. یعنی یہ اظہار تعجب ہے کہ کتنی حیرت انسان کے حال پہ، اتنا اللہ کا مجبور ہے، اتنا اس کے آگے جھک پابند ہے، اس کے باوجود اس کی بات نہیں مانتا. بات واضح ہے یہ بھی. اس کے بعد پانچواں اس کا استعمال ہے کہ اگر علامت ماں سے پہلے لفظ بعد ہو، یعنی ماں سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ بعد ہو، با عین دال اور دال کی زیر ہوتی ہے، تو اس کا ماں کا ترجمہ کہ، یعنی کہ دیٹ از کے معنوں میں کیا جاتا ہے. مثلا اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109 من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا. ہاں اب آپ دیکھیے کہ کہ کا لفظ آ رہا ہے نا، من بعد کہ ما تبین لهم الحق. اردو میں بھی اگر ہم ان دونوں کو ملائیں تو ایسے ہی بنتے ہیں نا، مم بادی کہ ما بیناہ للناس. مجھے اس کا اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ خلاصہ قرآن کرواتی ہوں تو آدھا جملہ میں خود اپنی اردو میں بول کے تو پھر آیت کو پڑھتی ہوں، تو بالکل مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے وہ بات کہہ دی اپنے لفظوں میں جو پھر یہاں عربی میں بھی لکھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا جب فیملیئر ہونے لگیں گے قرآن کے ساتھ اور ہم، تو یہ چیزیں ہمیں بغیر کسی کی ہیلپ کے پتہ چلیں گی کہ یہاں ماں کا معنی نہیں ہے، جو ہے، کیا ہے، کس قدر ہے، یا پھر کہہ کے معنوں میں. اسی طرح آیت 159 سورۃ البقرہ میں آتا ہے مم بعدی ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر سورۃ بقرہ کی آیت 145 میں آتا ہے مم بعدی ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا. پھر سورۃ بقرہ ہی کی آیت 75 میں آتا ہے ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر وہ اسے بدل دیتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوں، یعنی جانتے بوجھتے اس کو بدل دیتے ہیں. یہ بھی بات ہے. چھٹی اس کی علامت کیا ہے کہ قرآن مجید میں ماں کے ساتھ زالت اور زلتم اور لا کے ساتھ تزالو اور یزالونا وغیرہ استعمال ہوا ہے. ان فعلوں کو ماں اور لا کے ساتھ ملا کر دونوں کا ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے. آپ پہلے اس کو سمجھ لیں، لفظ ہمیشہ کے ساتھ، زالت، زلتم، تزالو، یزالون، ان کا روٹ کیا ہے؟ چاروں کا ایک ہی روٹ ہے. بولیے. ز و لام ہوتا ہے، زوال کا لفظ، جیسے زال یزیل زوالن سے. اب زوال کا لفظ اگر آپ کو ذہن میں رہے گا نا تو ان کا سب کا معنی یاد رہے گا. یہ اسی کی مختلف قسمیں ہیں. مثلا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 15 میں ہے فما زالت تلک دعواہم، تو ہمیشہ ان کی یہی پکار رہی. ٹھیک ہے، یہ قوموں کے تذکرے میں آیا ہے. پھر اسی طرح سورۃ مومن آیت 34 میں آتا ہے فما زلتم فی شقن، پس تم تو ہمیشہ ہی شک میں پڑے رہے. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 217 ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہود و نصارہ کے تذکرے میں آ گیا. تو پتہ کیا چلے گا کہ جب ماں کا لفظ جس جملے میں ہے پھر اس کے ساتھ زالا، زلتم، تزالا، تزالو، یزالون وغیرہ آ جائیں، اور یہ بہت کم آتے ہیں، پورے قرآن پاک میں چند ہی لفظ ہیں، تو پھر وہاں معنی جو ہے وہ کس سینس میں ہو جائے گا؟ ہمیشہ، हमेशा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके अलावा एक और भी इसका तरीका है, इसको सिर्फ अपने जहन में याद रखने के लिए, और वो क्या कि माँ के बाद अगर इसी जुमले में लफ्ज़ इल्ला आ रहा हो, ठीक है, इल्ला, इल्ला किसको कहते हैं, एक्सेप्ट, या फिर माँ के बाद इसी जुमले में इसम से पहले बा ज़ेर बी हो, तो इस माँ का तर्जमा नहीं से करते हैं। और बाकी जो सारे हमने मुख्तलिफ किस्में देखी ये टेक्स्ट से पता चलती हैं। सियाको सबाक क्या होता है, टेक्स्ट के बाद कैसे चल रही थी, जुमला कैसे बनेगा। मसलन ये जो मिसाल है इल्ला वाली, ये बल्कि इसको नंबर 7 होना चाहिए, ये बहुत अहम मिसाल है कि जब किसी जुमले में माँ और इवन ला के साथ भी आता है, इसके आप जहाँ माँ लिखा है ना ऊपर अपने पास अपनी बुक्स में ला भी लिख लें कि माँ और ला और एक तीसरा लफ्ज़ भी लिख लें हल, जैसे गोल चश्मी हा होती है ना, हल यंदुरून इल्ला अय्या अतियहुम, आती है कुरान में आयत, तो माँ ला और हल ये तीनों जब किसी जुमले में हो और उसी सेंटेंस में लफ्ज़ इल्ला भी हो तो इन तीनों का मानी नहीं होता, ठीक है। मसलन वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, और नहीं तुम चाह सकते मगर वो जो अल्लाह चाहे, सूरह दाहर की आयत नंबर 30 है, सूरह अल अनाम आयत 32 32 वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन वलाहुन, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर खेल और तमाशा, सूरत बकरा आयत 8 में आता है वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले। ये किस चीज़ की मिसाल हो गई, बाज़र बी की, पहली दो मिसालें किसकी थी, इल्ला की। फिर सूरत अलहाका आयत नंबर 41 41 वमा हुआ बिकौली शायरिन कलीलम मा तुमिनून, सूरत अलहाका में आता है और वो किसी शायर का कलाम नहीं, नबी सल्लम के बारे में इशारा है। वाह, और देखिए माँ के बाद बी आ गया ना, ये बी वाली मिसाल कम आती है लेकिन इल्ला और माँ और ला ये बहुत ज़्यादा आता है। सारे मिलके दोहराएं, शुरू से लेके अभी तक माँ के बारे में हमने जितनी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी सब एक साथ बोल दें, और जो नहीं देख मतलब अपने पारे को देखते रहिए ताकि आपके जहन में नक्श हो जाए। ऐसे बोलेंगे, नंबर 1 2 करके बोले, पहला इस्तेमाल क्या है माँ का, सब बोले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां। चलिए पहला कब आता है, आप बोलें पूरा जुमला, पहला इस्तेमाल कब होता है मानी का, जी आपके सामने लिखा हुआ सिर्फ उसी को देख के पढ़ना। जी आप देखिए कि माँ का तर्जमा मानी नहीं के मानों में आता है, माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, इसके लिए यानी हमें टेक्स्ट को देखना पड़ेगा कि ये कब आ रहा है, ठीक है। जो का मानी भी हो गया, क्या किस हुआ ये बताइए कि माँ का तर्जमा हमेशा कब आता है, सब बोल दें, जालत या जेल तुम और तजाल आएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए कि माँ का तर्जमा केह के मानों में कब आता है, के जब माँ से पहले बात हो। ये बताइए कि माँ के बाद अगर जुमले में इल्ला आ रहा हो तो माँ का क्या मानी होगा, और माँ के बाद अगर जुमले में बाज़र भी आ रहा हो तो क्या मानी होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इन सब की मिसालें जो हैं तीन तीन ढूंढनी है, इंशाल्लाह ताला फिर जब एक्सरसाइज होगी तो उसमें हम इनको दोबारा देखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल तो नहीं आपके जहनों में, जी किरण, अगर तो वो तो इन के सेंस में हम पढ़ चुके हैं ना पीछे, ये तो माँ और ला की हम पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, जी वो आगे आएगा, इसलिए वो तो मैंने आपको याद दहानी के लिए बताया, हल की आगे आएगी मिसाल, ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं हदीस। ये बताइए कि ये जो चेकलिस्टें थी ये तो गिनती के लोगों की हैं। अभी आप लोग जाने से पहले आप बारी बारी आप मतलब क्लास के एंड पे इंशाल्लाह ताला आप लोग रुक के बात कर बता के जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 या 4 लोगों की दोनों पार दोनों